मेरे परम धाम को तुम प्राप्त हो, जो कि तुम्हारे नाम से ध्रुव जाने स्थिर। ऐसे जो विष्णु लोक है वह लोक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसे ही वरदान देते हुए भगवान देखते देखते अंतर्धान सो गए। उस समय बालक ध्रुव ने सोचा, रे ये हमने क्या किया, कांच खोजते खोजते हमें कांचन मिला और कांचन को छोड़कर मैं कांच के टुकड़ा में रम गया, जहाँ प्रभु का दर्शन मुक्ति के लिए होता है, संसार से पार होने के लिए होता है, प्रभु के लोक में जाने के लिए होता है, उनके चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए होता है। वो न मान करके मैं जगत का सामान्य तुच्छ संपदा विषय सुख भोग को मान लिया और इसी में मैं रम गया। अहो मुझको धिक्कार है, मैं क्यों ऐसी प्रार्थना की, क्यों मेरे अंदर ऐसी चाहत हुआ। यही भगवान की परम अनुकंपा है। जो कोई प्रभु का भजन करता है, भगवान के चरण कमल को आश्रय करता है, उनके चरणों में ध्वज वक्र अंकुश कलश पताका आदि चिन्ह समुदाय है। जो कि कोई भी व्यक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय करता है तो उनके चरणों में रहता है अंकुश। अंकुश से क्या होता है कि एक बहुत बड़े मत वाले हाथी को अंकुश बस कर लेता है। इसी प्रकार हम सब के मत वाले हाथी के जैसे मन को बंद करने के लिए भगवान के चरणों का अंकुश सामने आता है। जो कि भगवान अपने चरणामृत प्रेमामृत और मधुरामृत का पान कराते ही वे हमारी सारी विषय वासना को संसार वासना को छुड़ा लेते हैं। इसलिए कोई भी भक्त कैसे भी हो प्रभु के चरणों में आश्रय लें। जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तब गुरु ही ऐसे सच्चे मार्ग को दिलाते हैं और भगवान का दर्शन कराते हैं। जैसे श्री नारद जी ने ध्रुव को भगवत प्राप्ति कराई। मंत्र तो सभी लोग जपते हैं, सभी लोग कीर्तन करते हैं, परंतु उसमें न तो कोई शक्ति है, न कोई प्रेरणा है और न ही कोई ताकत है। जो कि कोई गुरु अनुभवी पुरुष जब के मंत्र बोल देते हैं, वे अपनी साधना की शक्ति को उसके साथ में प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति होती है, जैसे कि ध्रुव को हुआ है। इस प्रकार ध्रुव महाराज जब वहाँ से लौटने लगे तो उस समय मन में कोई सोच से विचार से भी आ रहे थे कि हमें प्रभु ने भगवान ने ठग दिया, क्यों हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं। हमें भगवान के चरणों में भक्ति है। ऐसे समय में उनके पिताजी बड़े दुखी थे, तब नारद जी महाराज आ गए थे, उनके सामने अपनी बातों को सुना रहे थे कि मैंने अपने बालक को रोक नहीं पाया, न गोदी में ले सका, न उनको कोई प्यार किया और वह बेचारा कहाँ दुखी हो करके चला गया, कुछ पता भी नहीं। नारद जी बोले, वे संसार की अतुलनीय कीर्ति को प्राप्त करके भगवान की आराधना करके वे लौट रहे हैं, अतः आप उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत करें और आगे चलें, आप चिंता नहीं करें। ऐसे समय में महाराज कुत्तानुपात बाल हस्ती सजाए चतुरंगिनी सेनाओं के साथ सभी माताओं के साथ दोनों माता उत्तानुपात महाराज वे सब चले, उस बालक को गोदी में उठा ली, बड़े लाल प्यार के साथ में ले आए। महाराज उत्तानुपात ने कहा कि हमें धिक्कार है कि इतना दिन हम विषय सुख भोग में डूबे रहे हैं, हमारा छोटा बालक जबकि भगवान का दर्शन करके लौटे हैं, कितना ही सौभाग्य का विषय है। अब राज मुकुट उन्हीं के मस्तक पर दे करके स्वयं प्रभु के भजन के लिए निकले। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में पहले कुछ कामना वासना रहती है, कुछ इच्छाएं अभिलाषाएं रहती हैं, फिर भी एक वैकल्पिक भाव से कोई भी व्यक्ति जब गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, तब उसी से ही जीवन का वास्तविक कल्याण प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद्भागवत जी में इसी का ही वर्णन हुआ है। मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ में आपसे क्षमा मांगते हैं। इस श्लोक में अंत में कहा गया कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, समस्त भगवान के आदि हैं, स्वयं अनादि हैं। कुछ लोग कहेंगे भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, जगत में आते हैं तो कोई रूप धारण करके आते हैं, किंतु है वो निर्गुण, निराकार, निरंजन, अरुण। इस चीज को आप लोग समझिए, निर्गुण, निराकार, निरंजन, ये सब मौलिक शब्द नहीं है। ये कुछ उपसर्ग अर्थात तो रोग जैसे निर्णय करते हैं। नाक से पानी बह रहा हो, सिर में दर्द हो, ये सिम्टम है। जैसे इसको समझो कि सर्दी जुकाम लग गया, इसको निसर्ग कहते हैं। निसर्ग में नी लगा करके निराकार, और लगा करके अरूप, किंतु मौलिक शब्द रूप है, आकार है, गुण है। इसमें निसर्ग लगा करके आकार, निराकार, निराकार से आकार शब्द नहीं बनता, आकार से निराकार शब्द बनता है। वैसे गुण, गुण से ही नौ नियम स्तर लगा करके निराकार बनता है। निराकार से आकार नहीं बनता, निर्गुण से गुण नहीं बनता। इसलिए मौलिक शब्द है रूप, आकार। इसी को इस रूप में और समझिए, बाइबल में पहले चैप्टर में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने अपने रूप जैसा मनुष्य को बनाया। यदि गॉड का रूप नहीं होगा तो अपने समान रूप कैसे बनाएंगे मनुष्यों को? यदि क्रिश्चियन लोग इस विषय को नहीं मानते, भगवान का रूप नहीं मानते, तो उसको बाइबल से निकाल तो दे, नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारा यह सिद्धांत, हमारे शास्त्रों का, वेदों का, सब सम्य इदम अग्रास। भगवान कृष्ण का आज से करोड़ों वर्ष पहले जो रूप था अभी भी है, पीछे भी रहेगा। वो मरते नहीं है, उनका रूप पारमार्थिक है, सच्चिदानंद भगवान है। केवल बाइबल में ही नहीं, कुरान शरीफ में भी ऐसा लिखा है, इन्ना लाहा खलाका मिन सूरती, अपने सूरत के समान अल्लाह खुदा ने मनुष्यों को बनाया। यदि खुदा का कोई रूप ही नहीं है, अल्लाह का रूप ही नहीं है, तो अपने रूप के समान में कैसे बनाएंगे? इसलिए मुसलमान लोग भी क्या कुरान से इन शब्दों को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, किंतु मानते नहीं। ये उनकी धृष्टता है। अभी आपको बतलाऊं, जब ईसा मसीह जब युवावस्था में बच्चे थे, 10-12 वर्ष के, तो इंडिया में आ गए, वृंदावन में गए, जगन्नाथपुरी में गए, सब जगह। इधर के लोग कृष्ण को कृष्ण कहते हैं और उड़ीसा में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण फिर केस्ट, और केस्ट से क्राइस्ट। इस नाम से बड़े प्रभावित हुए। जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में उन्होंने सुना, वृंदावन में कृष्ण सुना, तो भाषा के इधर उधर होने से वो क्राइस्ट बन गया कृष्ण से। तो ये क्राइस्ट जो शब्द है, जैसा क्राइस्ट, ये क्राइस्ट कृष्ण के लिए है, दूसरा कोई भगवान नहीं है, वो लोग भी स्वीकार करते हैं। इसलिए उनके धर्म में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म से मिलती ही जुलती है, किंतु हम लोग विशुद्ध क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वो लोग मांस मछली इत्यादि खाते हैं,
हम लोग मांस मछली इत्यादि नहीं खाते। वहाँ पर बाइबल में भी नहीं लिखा कि मांस और जितने प्राणी हैं मछली खाने के लिए है। अब तो हमारे भारतवर्ष में भी ये चीजें आ रही हैं, इसलिए आप लोग इन चीजों को समझेंगे और हमारी प्राचीन संस्कृति के जो विचार है, ये भगवान का रूप है और वही रूप कृष्ण का रूप है। कृष्ण माने होता आकर्षण करना और आनंद देना। तो कृष्ण ऐसे हैं, विशेष करके देखिए उन्होंने स्त्री जाति को कितना सम्मान दिया है। अपनी मैया के हाथों से बंध गए, ऐसा किसी भी शास्त्र में किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है। जैसे क्राइस्ट के लिए उनका कोई लीला नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नारायण की कोई लीला नहीं, ऐसे उनकी लीलाएं नहीं है। राम जैसा कार्मिक अवतार जगत के जीवों के लिए उतर करके आए, हमारे दुखों को और मर्यादा की स्थापना की। और कृष्ण ने उस मर्यादा को भी लात मारकर प्रेम की मर्यादा स्थापित। गोपियों के चरणों में अपने सिर को नवा करके बंसी देकर के उनके शरणागत होते हैं। मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, आज तक किसी ने कहा? कोई नहीं कह सकता। ये कुछ नहीं है, विशेष करके राधा जी के द्वारा वो मुग्ध है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऋण हम चुका नहीं सकते प्रेम का। जो गोपियों ने प्रेम दिया उसके संबंध में अंतिम में हम लोग समापन काल में हम बतलाएंगे। दो तीन दिन में गोपियों का कैसा प्रेम था कि परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के आदि कर्ताओं के कर्ता और उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए प्रेम की जरूरत है। यदि हृदय में प्रेम आया तो संसार के प्रत्येक प्राणी प्रभु के ही अंश से इस बार अंश जीव अविनाशी के तन अमल सहज सुखराशी। सब में प्रेम होगा, इस बार देश कलह नहीं रहेगा। इसलिए इन कथाओं को जगत में प्रचारित होने की जरूरत है। आप लोग हम लोगों की सहायता करेंगे, जैसे मैं तो आप लोगों का आभारी हूँ कि इतना सुंदर पंडाल बनाया और प्रचार किया और जिसे आज हजारों व्यक्ति इस पंडाल में आकर के हरी कथा सुने, एक व्यक्ति भी यहाँ से तट से मस्त नहीं हुआ हरी कथा में। इसलिए आपको हम विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं। सात बज गया है
और कथा के साथ में जोरों से वृष्टि आई। हरी कथा का लक्षण है शुभ लक्षण, जहाँ पानी न हो वहाँ पर पानी भी बरसने लगता है। इसे मैं इसे सुनी समझता हूँ, किंतु ये स्थान थोड़ा सा नीचा है। जैसा आप देख रहे हैं सड़क और चारों तरफ में ऊंचाई है, पानी भर गया। चिंता हुई आज हरी कथा किस पंडाल में होगी, किंतु इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है जो अपनी चाय की तैयारी अपने टेबल तक नहीं लाते, दूसरे लाते हैं। और वे लोग बक्सा के जल में भी अपने पसीने के जल से तर बतर हो गए और यहाँ का पानी करीब करीब 1,000 लीटर बड़ी मुश्किल से यहाँ से पंडाल से बाहर की तरफ लेते किया। अन्यथा आज इस पंडाल में आप लोग हरी कथा सौन काशी जो नहीं पा सकते, इसलिए इन कार्यकर्ताओं को मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि ये लोग हरी कथा के लिए इतने समर्पित हैं। भगवान कथाओं के लिए तो भगवान इन पर कृपा करें, ये कथा इन पर कृपा करें। अब मैं कथा की ओर आता हूँ। आप लोग सब लोग मेरे साथ में गोकुल में पहुंचे। कल मैंने भक्ति की परिभाषा में बतलाया था, तन से मन से वचन से इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भावनाओं के द्वारा कृष्ण के लिए नैरंतर्यमयी अनुकूल मई सेवा की चेष्टा को भक्ति कहते हैं, किंतु उसके अंतर्निहित दो लक्षणों के द्वारा कोई भी संसारी कामना वासना न हो इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य कहा गया। अन्याभिलाष शून्य क्यों नहीं कहा गया? जो अन्याभिलाषिता कहा गया सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, तो भी आप लोग ध्यान से श्रवण करने की चेष्टा करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये तो एक तरह से इष्ट गोष्ठी है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोल ही नहीं सकते। तो यदि स्वाभाविक स्थिति में आपको जैसे अभी है स्वाभाविक स्थिति, उस स्थिति में अभी आता है तब तो बहुत खतरनाक है, भक्ति को नष्ट करती है, उसको सकाम या दूसरी भक्ति बना देती है। किंतु अस्वाभाविक स्थिति में भगवान से कुछ प्रार्थना हो तो वो भक्ति नष्ट नहीं है। जैसे द्रौपदी जी, उनका वस्त्र हरण हो रहा है, जो शासन 7,000 हाथियों का बल देकर कैद तीर को खींच रहा है, नंदी करके दुर्योधन से जंगल पर बैठ लाएगा, वो भी सभा में जहाँ पर भीष्म द्रोण और पांडव सब लोग वहां पर खड़े पड़े हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक स्थिति रहना मुश्किल है। उस समय में उसने हाथ उठाकर हे गोविंद रासरण अब तो जीवन है, ये भक्ति का दूषण नहीं है। किंतु स्वाभाविक स्थिति में यदि हम कहेंगे हे प्रभु हमें धन दीजिए, जैसे ध्रुव महाराज जी हैं और लोग हैं, हम लोग भी हैं, स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कुछ धन जन पुत्र परिवार आरोग्य इत्यादि की प्रार्थना करते हैं, वो भक्ति के लिए अति है, वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म से थका थकी हुई भक्ति होना नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या? जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक कर्म अपरिहार्य है, कर्म करना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान का एक मिनट नहीं आप चल सकते। किंतु समझिए ये कर्म किसको कहते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, उसमें कर्म कहां है? कर्म नहीं है। मैं आम खा रहा हूं, या मैं आम खा रहा हूं, क्या खा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो? अपने लिए आम खा रहे हो, ये हुआ कर्म। और मैं केवल खा रहा हूं, इसमें कर्म नहीं है। इसलिए सारी क्रियाएं जो अपने लिए करते हैं तो ये कर्म हुआ। और वही क्रिया यदि भगवान के लिए कर रहे हैं, बाजार जा रहा हूं, वहां से फल लाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा, यदि कर्म है, किंतु भगवान के उद्देश्य से होता है। इसलिए जो भी कर्म हो, गीता में जैसे बतलाया गया है, जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। यदि वही कर्म भगवान के लिए करके उसका प्रसाद लीजिए, कर्म का कर्मत्व तो खत्म हो जाता है, जीवन मरण से वो आदमी मुक्त हो जाता है। यही कर्म का कौशल है। इसलिए कोई भी कर्म अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। प्रसाद तो रखेंगे, प्रसाद से धारण करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, वो पूरा तृप्त होकर के खा करके तुम्हारे लिए रख देंगे। ये मत सोचो देखो जो उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं, उसके अंदर में जो प्रेम छिपा हुआ है उसको वो धारण करता है। विद्वानी के घर में गए, दुर्योधन के घर में तरह तरह के मेवा रखे गए हैं, उनको नहीं खाया, नहीं दिया। अब विदुरानी के घर में गए तो विदुरानी ने प्रेम से केले के छिलकों को खिलाने लगी और उसके भीतर से गुदे को फेंकने लगी। विदुर नहीं थे विदुरानी। विदुर जब आए लौट करके देखा अरे ये छिलकी खिला रही है होश नहीं। फिर से बोले जे चुप रहो द्वारका में 7,000 रानी कितनी 16,000 रानियां जो देती हैं खिलाती हैं उसमें मुझे इतना प्रेम नहीं आ रहा जितना कि आज छिलके से मुझको प्रेम मिल रहा। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं प्रेम की जरूरत है। प्रेम के द्वारा ही बची हुई है। इसलिए कर्म के द्वारा ढकी हुई भक्ति न हो संसारी। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा भगवान मिलेंगे मिल जाएंगे। माता पिता की सेवा से गरीबों की सेवा से और जो समाज के कार्य हैं ठीक है वो एक प्रकार से भगवान की सेवा ही है बात तो ठीक है किंतु माम एव जे प्रपद्यन्ते माम एव माने मुझे ही भगवान को देने से जगत की तृप्ति हो जाती है ऐसा विश्वास रखो। एक एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते एक बच्चे को भी प्रसन्न नहीं कर सकते और तस्वीर पूछते जगत कुछ ज्ञानों ने भोग लगाया जगत की सारी जगत की तृप्ति हो जाती। इसलिए भक्ति कर्म और ज्ञान के द्वारा भी क्षति नहीं हो ये सब कर्म करने से तभी भगवान की कृपा मिलेगी भक्ति होगी। भक्ति पसंद का अवलंबन आना भक्ति पसंद है। ये किसी कारण ज्ञान योग तपस्या व्रत होम साध्याय संयम इसके वशीभूत नहीं। ये तो हुआ इधर अनुकूल लेने कृष्ण अनुशीलन में एक प्रश्न उठता है कृष्ण के लिए भक्ति रोज माना होनी चाहिए और अनुकूल रूप में होनी चाहिए ये परिभाषा है। रोचमाना माने क्या भगवान को रुचने वाली अच्छी लगने वाली तृप्ति करने वाली होनी चाहिए अनुकूल नहीं होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए लेते हैं जसोदा मैया
और प्रति मंथन करते 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 बाल कृष्ण अपने बिस्तरे से उठे और मैया कहाँ है खोजने लगे। देखा कि मैया तो है नहीं। देखा जी दूर में दधि मंथन कर रही हूँ
अपने पन्ना राजतम गुरु पाद पद्म और विष्णु पाद किस्मत भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडक संघ की ज्ञापन करता है। तत्पश्चात उपस्थित श्रीगण्य सन्यासीगण वैष्णव वैष्णवीगण उपस्थित श्रोत्र वृंदक सबके चरणों में मेरा यथा योग्य अभिवादन स्वीकार। आज भगवान की कृपा से हम लोगों का तृतीय दिवस हरी कथा चल रही है। आज एक आदमी ने प्रश्न किया कि आज के युग में ये हरी कथा कृष्ण कथा की आवश्यकता क्या है और दूसरा प्रश्न पूछा भगवान निराकार है कि साकार है। मैंने जैसा जो उत्तर दिया उसका थोड़ा सा पहले विवरण दे करके मैं अपनी कथा आरंभ करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आजकल हवा में पानी में आग में भी जनमानस में भी सर्वत्र प्रदूषण फैला हुआ है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए हरी कथा एक सबसे उत्तम माध्यम है। जैसे आजकल हवा के तरंगों पर विश्व में संदेश भेजे जा रहे हैं
सब कुछ हो रहा है, कंप्यूटर पे नाभी किसी के ऊपर में निर्भर करता है। ये हरि कथा हवा के तरंगों में विश्व के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचेगी, आप अनुभव करें न करें, और ऐसी गंदगी का भी प्रदूषणों को रोकने में बहुत कुछ सहायता होगा। जो काम दूसरी चीजों से उपायों के अवलंबन करने से नहीं होगा, शादी गंदी राजनीति इत्यादि शब्द इत्यादि का जो प्रदूषण फैल रहा है हमारे देशों में फैल रहा है, विशेष करके चुनावों के समय अवसर पर जो शोभा जाते हैं और ये सब निकलते हैं उसमें शब्द के प्रदूषण इत्यादि जो फैलते हैं उससे देश और विश्व का अहित होता है, प्रदूषण फैलता है। हरि कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, हवा के तरंगों के माध्यम से, जैसे एक तालाब में एक कंकड़ फेंका राउंड का बनता हुआ बनता 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 और दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम संकीर्तन हरि कथा विश्व के एक छोर से दूसरी छोर तक मनुष्य के अनजान में ही सब प्रदूषण को दूर करता है, सोचे करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कीर्तन का महत्व वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, यहाँ तक कि आज के युग में अभी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बिहारी और जितने भी हमारे साहित्यकार लोग हो गए हैं प्राचीन का, ये सब चीजों को ग्रहण किया, कृष्ण लीला का वर्णन किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को इस युग में तो जानते हैं, ये हमारी आज हिंदी भाषा के वो राष्ट्रपिता एक तरह से, तो इन लोगों ने कृष्ण के चरित्र इत्यादि का वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त को आप लोग जान, अयोध्या प्रसाद को जानते हैं और सबको, इन लोगों ने कृष्ण लीला कथाओं का वर्णन किया। दूसरी बात, हम लोगों का ये समझना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, राजनीति कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सुख और शांति की आवश्यकता है, दुख दूर हो, सुख और शांति मिले। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, मनुष्य के अतिरिक्त भी पशु प्राणी पक्षी सभी यही चाहते हैं, दुख रही, सुख और शांति मिले, जीवन में मिले या परलोक में भी मिले, ये कैसे होगा, जब तक कि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति के वेद उपनिषद रामायण पुराण और आधुनिक ग्रंथ हैं उनको नहीं ग्रहण करेंगे, कभी भी जीवन में सुखी और शांति नहीं हो सकती है, एकदम गांठ बांध करके रख लो। तुलसीदास जी के शब्दों में ही इसको गांठ बांधो, कमर छपी सबल जान नहीं पा रहा, भले ही कमर कछुए के पीठ पर रोए उग आए इसको हम मान सकते हैं, आकाश में फूल खिल जाए इसको भी हम मान सकते हैं, नहीं है मान लेते हैं, हिम से प्रकट अनल प्रकट बल होई, बर्फ से आग पैदा हो जाए इसको भी मान लेंगे हम, नहीं होता तो भी मान लेंगे, तुलसीदास जी का खरगोश को सिंह आ जाए ये भी हम मान लेंगे, खरगोश को सिंह नहीं होते ये भी हम मान लेंगे, बारिम से बल हो ये कथा से बल से देव हरि भजन न भवत सिद्धांत अपे, पानी को मचने से बिलोने से पानी मथने पर हो घृत घृत निकल जाए ही गौवा का ये भी मान लेंगे, और चिकता से बनते रेती से भले ही पीसने से तेल आ जाए इसको भी मान लेंगे, किंतु बिनु हरि भजन न भव सर्ज या सिद्धांत, यदि आज के हमारे लीडर लोग नेता लोग भारतीय संस्कृति को अपनाएं तो देश का कल्याण हो सकता है, जब तक राजनीति धर्म नीति से शासित नहीं होगी कभी सुख और शांति नहीं होगी, और उपद्रव बढ़ता चला जाएगा, अशांति बढ़ती चली जाएगी, सुख अशांति दूर होती जाएगी। राम की राजनीति वशिष्ठ इत्यादि ऋषि महर्षियों के विचार से शासित होती थी, तब राम राज्य था। कृष्ण की नीति भी उसी प्रकार से हमारे महर्षियों के ऊपर में भृगु और कौन कौन से अब थे उनके नीतियों से शासित होते। शिवाजी को जानते हैं, उनके गुरु समर्थ रामदास थे, उनकी नीतियों से शिवाजी भारत को स्वतंत्र कराने की कितनी चेष्टा की। महाराणा प्रताप को भी जानते होंगे, भामाशाह और सबको जानते होंगे आप लोग इतिहास पढ़ने वाले। जब तक राजनीति धर्म नीति के द्वारा शासक नहीं होगी और प्राचीन शास्त्रों का जिनको ज्ञान नहीं है, वो भले ही एंटी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सब मंत्री हो गृह मंत्री हो जाए, उसे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन बातों को ख्याल रख करके हमारी शासन नीति राजनीति भी धर्म नीति के द्वारा शासित होकर चले और उसका ज्ञान हमारे एमपीओ को और हमारे विधानसभा के मेंबरों को और सब लोगों को, जो भारतीय संस्कृति खुद नहीं जानते, जो चोर बदमा जो स्वयं संस्कृत रहे अपराधी रहे हैं, वो क्या देश का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सुने भी तो ऐसे लोगों को जो भारतीय संस्कृति का जिनका ज्ञान है, जो कुछ आचरण करते हैं उसे धर्म विचार के, उन लोगों को तब तो भारत का कल्याण होगा। अन्यथा जो नौ उदाहरण दे करके बताया, पश्चात देशों की तरह में हमारे देश भी उसी तरह से रहा। पश्चात देश लोग हमारे धर्म नीति से शिक्षा करके आज हम विश्व के कम से कम तो 60-70 समृद्ध और गरीब देशों में हम जा चुके हैं और लाखों लोग हमारे अनुवाई हुए हैं हमारी भारतीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति के लोगों को यहाँ पर जो रहते हुए आज स्कूलों में हम सुनते हैं कि शराब बच्चे पीने लग गए, मांस मछली खाते हैं। हमारे पिता माता गुरुजन यदि ये नहीं सीखेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। इसलिए इन पर विचार करेंगे और विचार करते चलेंगे तो भारतवर्ष में क्रांति आएगी और भारत के विचार बदलेगा और हम लोग स्वयं अपनी संस्कृति पर निर्भर रह करके राष्ट्र का उन्नयन कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, मैंने कल संक्षेप में एक बतलाया था, हम रहे जितने मौलिक शब्द हैं, मौलिक शब्द आप लोग तो समझते होंगे हिंदी के जानने वाले, मूल स्वरूप, रूट ऑफ दिस वर्ड, वो उसमें मूल रूप इत्यादि मूल रूप ये शब्द है। आकार गुण से निर्गुण बना है, निर्गुण शब्द से गुण नहीं बना उपसर्ग लगाया गया, उसे रूप उसमें नहीं उपसर्ग लगाकर अरूप बना। उसी तरह से इसने भी ये चीजें हैं नकारात्मक चीजें उपसर्ग के द्वारा मूल रूप में लगाकर और उसका अर्थ विभिन्न किया जाता है। इसलिए भगवान का रूप है और कल हमने बाइबल और कुरान के उदाहरणों से बतलाया सिद्ध किया, कुरान मानता है और बाइबल भी मानती है जो भगवान का रूप है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार में गॉड ने मनुष्यों को बनाया। भले ही व्यवहारिक रूप में वो लोग नहीं मानते हैं किंतु परमात्मिक रूप में उनको जरूर बाइबल का ही बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो निकाल तो दें, देखें बाइबल से निकाल दें, न्यू टेस्टामेंट बना लें, संभव नहीं। उसी प्रकार से कुरान शरीफ में भी ऐसे आया है, इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, अपने सूरत के समान अल्लाह खुदा ने मनुष्यों को बनाया। दूसरी बात एक और समझिए, एक कारण कार्य एंड कार्य और कारण स्टोरी है, कॉज एंड एक्शन स्टोरी है। मतलब क्या, कारण में जो चीज वर्तमान है वही कार्य में होगा। इमली का पेड़ देखते हैं, इमली के बीज से बना आम का, आम की गुठली रोकने से लगाने से इमली का पेड़ नहीं निकलेगा। जिस कारण में कार्य की पोटेंशियल है वही चीज उससे निकलेगा। सभी शास्त्र ऐसा स्वीकार करते हैं, भगवान के द्वारा जब सृष्टि हुई। कुछ लोग तक कहते हैं ये जो प्रकृति सेकंड, तो वो बात सीखती नहीं है। युक्ति के विचार से, शास्त्रों के विचार से वो युक्ति नहीं सीखती है। अपने आप कोई चीज नहीं हो जाता। यदि अपने आप कुछ हो जाता तो बंदरों से जैसे मनुष्य हुआ है, हम कहते हैं यह थ्योरी गलत है, यह डार्विन थ्योरी गलत है। यदि होता था करोड़ों वर्षों में मनुष्य और बंदर के बीच में कोई नई जाति उत्पन्न तो हो जाती, क्यों नहीं थी? नहीं होगा। इसलिए कारण में जो चीजें हैं वो कार्य में होगा। अपने जिस ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान से हुई है, प्रभु से हुई है या जिससे हुई है मान लो, उसमें यदि रूप नहीं है तो ये रूप कहाँ से आया? इतना पशु पक्षी जीव पतंग मनुष्य इस सब का कहाँ से आया? यदि मूल भगवान ने या सृष्टिकर्ता ने इतने रूपों की पोटेंशियल नहीं है, रूप नहीं है, तो कैसे निकलेगा? जीरो चीज है, फ्रॉम नथिंग एनीथिंग समथिंग और एवरीथिंग कैनेट बी क्रिएटेड। कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, इसे हमारे शास्त्रों में बतलाया पूर्णम मद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णम उद्य थे पुनश्च पूर्णमे वह। हमारा भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण से ही कृष्ण हमारे परिपूर्ण है। उनसे जितने अवतार निकले हैं वो सभी पूर्ण है, और जो बाकी रह जाते हैं वो भी पूर्ण है। कोई भी जैसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, असंख्य माइनस असंख्य इज इक्वल टू असंख्य। हमारा प्रभु ऐसा है। इसलिए जिसमें उसमें यदि रूप नहीं होता तो इतने तरह के भी समय रूप है, कीड़े पतंग मनुष्य सुअर गधे देवता दान सब, ये कहां से आ गए? इसे जहां पर नथिंग है वहां से कुछ भी नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी समथिंग। इसलिए कृष्ण से ये सब चीजों की सृष्टि हुई है। इसलिए कृष्ण का रूप है। कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम, अंग्री से ऐसा कहते हैं निर्देश। हमारे भारतीय लोगों को गीता भागवत रामायण पुराण मानना चाहिए। इसलिए गीता में स्वयं कहते हैं माम एव जे प्रपद्यन्ते मायामेकम मायामेकम, माम एकम मने मुझे मैंने अंगुली दिखला करके अपने स्वरूप को। इसलिए कृष्ण स्वरूप कभी मरता नहीं है। जो बात भीष्म पितामह के बाणों से नहीं मरा, जिसने आग खा करके नहीं मारी मरा, जो गोवर्धन पर्वत को उठा करके उसके नीचे काली अंगुली पर 7 दिन तक धरे रखा तो चल नहीं गया, काली अदा में टूट गया बीच के गड्ढे में जीत करके और मरा नहीं, वही पहली जबान से मर जाएगा? ये नहीं हो सकता। लोग शास्त्रों को जानते नहीं है, गुरु से पढ़ते नहीं है, इसलिए नहीं बतला सकते हैं। यदि कृष्ण मर जाते तो आजकल कृष्ण का वो रूप दर्शन करते हैं कैसे? दर्शन आज करते कृष्ण के जन्म से पहले कैसे कृष्ण की आराधना होती थी? अनंत काल से हो रही है, राम की आराधना हो रही है। इन्हें ऐसे मत। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावन रमना काशी उपासना मधु मधु पर्गे न जा कल्पिता विबद्धात्म प्रमाण मलम प्रेमा पुनर्थो महान। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु अभी 500 वर्ष पहले आए, सारे शास्त्रों का निचोड़ अपने जीवन में दिखला करके गए। उन्होंने कहा भगवान हमारे आराध्य कौन? वही राम है, नितिन है, कल्पिन है, बामन है, वही इसी रूपों में आते हैं। मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम के रूप में आते हैं, कभी प्रेम की मर्यादा को जगत में प्रचार करने के लिए ये प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम के बिना सब जीवन फीका है। यदि आप लोग भी किसी को प्रेम दे सके, राजनीतिक लोग प्रेम दे सके, प्रेम करना सिखाए परस्पर अपने विरोधी पार्टियों पर, यदि प्रेम दिखलाए तो सभी कुछ बदल जाए नक्सा। प्रेम ही हमारा आराध्य वस्तु है और प्रेम का स्वरूप कृष्ण है और वृंदावन कृष्ण जैसा ही गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इसके हम लोग प्रचार करने के लिए आए हैं, उनकी आराधना और सब जगत सुखी और शांत हो जाएगा जगत। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, यद्यपि वेद प्रमाण है, वेद इत्यादि का सार श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भागवत का भी कारण तुलसीदास ने रामायण में भर दी है। इनका आदर्श से चैतन्य महाप्रभु हमारा जीवन का उद्देश्य परमार्थिक होना चाहिए, यह कृष्ण ही हमारे आराध्य। गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, उसकी आरंभ कैसे हम करेंगे? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। भागवत में कहते हरे नाम, उपनिषदों में हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम वैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान नमाज पढ़ने में परिश्रम लगता है, ऊपर बैठक करना पड़ता है ना, दम खुल जाएगा आप लोगों का। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है, हाथ उठा करके यदि सिर नहीं नवा सकता है तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं कर सकते। राम राम खाने में क्या लगता है, नाम ले सुभवती जो सुखायी जन मन सुख जाता है, जीवन सुखी और शांति हो जाता है। नामों की हमारे शास्त्र में बहुत, इसलिए कलयुग में और कुछ मत करो, सवेरे स्नान किया तैयार हुए एक बार राम राम कह दिया, बस अपने काम में चलो, कृष्ण कृष्ण कह दो अपने काम में चलो, देखो सुनो सब करो। इसलिए कलयुग में नाम का नाम ही आधार है। कहते हैं जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराक्षे मना कुछ एक नाम यदि भगवान का हो जाए, लेकिन उग्र तापों से भी उसकी रक्षा हो जाती है, जैसे तैसे निकल गया, चलते फिरते उठते बैठते फिसलते हुए भी भगवान का नाम आ गया, उसका कल्याण हो जाता है। भगवत में तो यहाँ तक आते हैं, क्या इच्छा करे न इच्छा करे, जो भी लोगों के नाम अकामो सर्व कामो मुक्त काम उदार दिन तिब्रेन भक्ति योगे न जगत नाम संकेत। तो नाम संकेतन कलयुग में से भगवान ने सारी शक्तियां नाम में भर दी है, इसलिए नाम करने में कोई नहीं, परिचम की भी सहज रूप में हो जाता है। कहते हैं मधुर मधुर में सत मंगलम मंगलाना सकल निगमोली सत्फलम चित्त रूपम सकृत परिगीतम सभ्य हे लियाबा मृगमल नर्मात्रम तार ईश कृष्ण। वेद रूपी कल्पलता का ये परिपक्व फल है, चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी नाम आ गया बस उसका कल्याण हो। इसी तरह से समस्त शास्त्रों में बतलाया नाम संकीर्तनम जस्य सब पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामो हरि पर। उस परम हरि को हम स्मरण करते हैं जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप जीवन के दूर हो जाते हैं और सभी सुख और शांति आ जाती है। इसलिए नाम में भरोसा रखेंगे, नाम करेंगे। आज उसी के संबंध में हमारे वन महाराज जी कलयुग में केवल नाम आधार, इस कलयुग में एकमात्र ही नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत ने जितने भी उपाख्यान सुनाया और ये सारी यही है परिणाम, नाम ही साधन है और नाम हासिल। इसे सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, और वो भी राजन जे एक अति महान गुण कितनादेव कृष्णस्व मुक्तम संग परम ब्रजे। पहले दो कलिजे राजन, हे राजन हे परीक्षित महाराज, इस कलिजुग में मनुष्य की अस
असंख्य बड़ी दोषी किंतु एक भूल परिवर्तन वह गुण क्या है चित्त आत्महत्ति नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीत परम मुक्त यानी मुक्त होकर के ब्रजम यानी ब्रजधाम को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात समझी यह तात्पर्य है परिचित में एक ही मात्र उपाय है संसार से मुक्ति वाची नाम संकीर्तन। इसलिए हमारे तुलसीदास जी अत्यंत सहज सरल हिंदी भाषा में श्रीमद् भागवत के सभी संक्षिप्त श्लोक के वर्णन करते नाम की महिमा सर्वत्र वर्णन कर वर्णन किया जिसको महाराज के मुखारविंद से आप लोग श्रवण। राम नाम की अंक है सब साधन सुसून अंक गए हाथ कछु नहीं अंक रहे भाई दस दून। राम नाम की अंक है आप लोग का विद्वान है आप लोग जानते हैं एक लिखिए और इसके बाद जितने भी आप शून्य दिखे जाए एक एक शून्य से कीमत दस गुना बढ़ जाता है। आप एक लिख करके एक शून्य दे दीजिए दस हो जाता है फिर उसके और एक शून्य लगाइए सौ हो जाए और एक शून्य लगाइए हजार हो जाएगा और जितने भी शून्य लगाते जाए एक एक करके शून्य की कीमत दस गुना बढ़ते जाएगा। किंतु आप देखिए एक के आप अमित कर दीजिए सोच दीजिए शून्य के वैल्यू क्या है जीरो के वैल्यू कुछ नहीं। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं एक यह शब्द यह अंक क्या है राम नाम और कृष्ण नाम कृष्ण भगवान रामचंद्र की जय। कृष्ण नाम और राम नाम ही अंक है जीवन के यही सार है और इसमें भागवत में गीता में